आज सुबह के प्रथम सत्र में स्वयं का सही परिचय आपने प्राप्त किया। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम सत्य स्वयं के बारे में यही आपने समझा कि हम आत्मा हैं। जीवन की सबसे बड़ी अज्ञानता यही रही कि हम जीवन भर खुद को देह समझते रहे, देह भान में जीते रहे, देह अभिमान में आकर कर्म करते रहे। अब ज्ञान का तीसरा नेत्र यही खोलना है कि हम शरीर नहीं हैं, हम इस शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। देह समझने से हमारी बुद्धि देह में इंद्रिय रसों में ही डूबी रही, खाने में, पीने में, पहनने में, देखने में, सुनने में, बोलने में, घूमने में, इन्हीं इंद्रिय रसों में ही हम डूबे रहे। अब हमें सत्य पता चला है कि शरीर केवल एक साधन है जिसके द्वारा कर्म हमें करने हैं। इस शरीर रूपी साधन को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है, परंतु इसके अभिमान में नहीं आना है। हमें सदा अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में रहना है कि हम आत्मा हैं और अपने असली स्वरूप में हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, शांत हैं। हम स्वयं एक शक्ति है, ज्योति बिंदु है। इस स्मृति में स्थित होकर हर कर्म हमें करना है। अब इस सत्र में दूसरा मुख्य सत्य हम समझेंगे कि वो परम शक्ति परमात्मा कौन है, जिसको जन्म जन्मांतर से हम ढूंढते रहे हैं, जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, प्रभु परमेश्वर कहकर याद करते रहे हैं, वो परमात्मा कौन है। ये भी हम सब जानते हैं कि परमात्मा एक है, गॉड इज वन कहा जाता है, सबका मालिक एक कहा जाता है। और ये विवेक की बात भी है कि परम सुप्रीम ऊंचे से ऊंच एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते, अनेक नहीं हो सकते। जब परमात्मा एक है तो उनका सही परिचय भी एक ही होना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि एक परमात्मा के बारे में अनेक मान्यताएं हैं, अनेक मतें हैं, जिसको श्री राम में श्रद्धा है वो कहेंगे श्री राम ही भगवान है, जिनको श्री कृष्ण से प्यार है वे कहते हैं कृष्ण ही परमात्मा है। कोई प्रकृति को, नेचर को गॉड समझते हैं, कोई आत्मा को ही परमात्मा समझते हैं और अपने आप को ही भगवान कहलाते हैं। कहीं सब में भगवान है ऐसी भावना रखते हैं। तो एक परमात्मा के बारे में आज अनेक मान्यताएं हैं, अनेक मतें हैं, सिद्ध है परमात्मा का सही परिचय हम नहीं जानते हैं। परमात्मा का सही परिचय कोई मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती है, इसलिए परमात्मा खुद आते हैं और अपना सही परिचय हम मनुष्य आत्माओं को देते हैं। परमात्मा का सत्य परिचय किसको कहेंगे, क्या उसकी परिभाषा है? स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम आत्माओं को जो बताया है वो परिभाषा मैं आपके सामने रखूंगी। मैं 5 बातें आपको बताऊंगी जिससे आप वेरीफाई कर सकेंगे कि सही अर्थ में किसको परमात्मा कह सकते हैं। पहली बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जिसे सभी मान्य करें। परमात्मा कोई एक धर्म के, कोई एक देश, जाति, समाज के पिता नहीं। परमात्मा सारे विश्व का पिता है, सर्व आत्माओं का परम पिता है। इसलिए परमात्मा का सही परिचय हम उसे ही कह सकते हैं जिसे विश्व के सभी धर्म की आत्माएं मान्य करें। ठीक है, कुछ माने दूसरे उसे ना माने को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हो। हम सब जानते हैं कि जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु भी अवश्य होते हैं। जो शरीर धारण करते हैं वे शरीर छोड़ते भी हैं। जो जन्म लेते हैं प्रकृति के बंधन में बंधते हैं। शरीर क्या है? प्रकृति है, 5 तत्व से बना है। इसलिए जो जन्म लेते हैं प्रकृति के बंधन में बंधते हैं। जो जन्म लेते हैं कर्म बंधन में बंधते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर धारण करने के बाद एक क्षण भी कर्म किए बिगर रह नहीं सकते हैं। इसलिए जो जन्म लेते हैं कर्म के बंधन में बंधते हैं। जो जन्म लेते हैं वो देह संबंध में बंधते हैं। बच्चा पैदा होते ही परिवार का सभ्य बन जाता है। वो किसी का बेटा है, पोता है, भाई है, संबंध में बंधता है। जो जन्म लेते हैं सुख दुख के बंधन में बंधते हैं। इसलिए परमात्मा उसे कह सकते हैं जो जन्म मरण के सुख दुख के देह संबंध के कर्म के प्रकृति के बंधनों से मुक्त है। इसलिए परमात्मा को सदा मुक्त कहते हैं। और हम सभी भी भक्ति में सदा परमात्मा से क्या मांगते रहे हैं? मुक्ति। हम सदा भगवान से ये मांगते रहे हैं कि हमें दुखों से छुड़ाओ, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। अंडरस्टूड है कि जो स्वयं मुक्त होगा वो ही तो हमें मुक्ति देगा, वही तो हमें मुक्ति देगा। इसलिए परमात्मा उसे कह सकते हैं जो सभी बंधनों, प्रभावों और लेपों से मुक्त। तीसरी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जिनके कोई माता पिता गुरु शिक्षक ना हो। परमात्मा से ऊपर और कोई आत्मा नहीं है जो उनके माता पिता गुरु शिक्षक स्वामी शेठ बन सके। वे ही परम है, ऊंचे से ऊंचे, उनके ऊपर और कोई नहीं। इसलिए परमात्मा के लिए हम कहते हैं कि वे पिताओं के पिता हैं, शिक्षकों के शिक्षक, गुरुओं के गुरु, पतियों के पति, नाथों के नाथ कहे जाते हैं। वो ही परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है। चौथी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो अपनी परम स्थिति में, अपने परम गुणों में, अपने परम कर्तव्यों में सदा स्थित है, सदा स्थित है। ऐसे नहीं आज परम है, धीरे धीरे मध्यम हो जाएंगे, अधम हो जाएंगे, नहीं। जो सदा परम, ऊंचे से ऊंच, सर्वोच्च, अपरिवर्तनशील एक रस, हम आत्माओं के गुण कर्म स्थिति बदल जाते हैं। आज के प्रथम लेसन में आपने समझा कि हम सभी आत्माएं ओरिजिनली शुद्ध है, शांत है, सत्य है। पर आज देहाभिमान में आकर हम पतित, दुखी, अशांत बन गए हैं। आत्माओं के गुण कर्म स्थिति बदलते हैं। परमात्मा सदा अपने परम गुणों में स्थित है। इसलिए लोग कहते भी हैं, कि परमात्मा को पहचानना आसान है, क्योंकि वे अपने परम गुणों में सदा स्थित है। वो सदा प्यार का सागर है, सदा रहम दिल, सदा शिव, सदा मुक्त है। और ही लोग कहते हैं, इंसान को पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो हर घड़ी अपना रंग बदलता रहता है। और पांचवी बात, परमात्मा उसको कह सकते हैं जो सर्व ज्ञाता है और सदा दाता है। सर्व ज्ञाता है माना ज्ञान का सागर है, सब कुछ जानते हैं। संसार के आदि मध्य अंत को, आलोक परलोक को जानते हैं, इसलिए उससे नॉलेजफुल कहते हैं। तब हम कहते हैं परमात्मा के लिए कि परमात्मा सर्वज्ञ है, वो सारे यूनिवर्सल ट्रुथ्स को जानते हैं। मनुष्यात्मा के लिए हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मनुष्यात्माएं अल्पज्ञ है, हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है, हम जानते हैं और भूल जाते हैं, हम स्मृति विस्मृति को प्राप्त होते रहते हैं। और परमात्मा सदा दाता है, सदा दाता है, देते ही रहते हैं, देने के लिए ही आते हैं। इसलिए हम उनकी महिमा में कहते हैं, शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सदगति दाता, वर दाता। हम उसकी महिमा ये करते हैं। मनुष्यात्मा सदा दाता नहीं है, है? मनुष्यात्मा सदा दाता है? नहीं है। परमात्मा सदा दाता है। परमात्मा के सत्य परिचय की इस परिभाषा की पांच बातें मैंने आपको बताई। अब ये पांचों ही बातें बुद्धि में रखकर अब आप विवेक से सोचिए, सही अर्थ में किसको परमात्मा कह सकते। हम तो भक्ति में भावना से अनेकों को भगवान मानते रहे हैं। सब में भगवान है कि भावना रखते रहे हैं, पर सत्य सत्य क्या है, सत्य क्या है। अब आप विवेक से सोचकर इस परिभाषा को बुद्धि में रखकर अब आप बताइए, क्या आप और मेरे जैसे साधारण मानव शरीरधारी मनुष्यात्माओं को परमात्मा कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं। तो सबसे पहली बात बुद्धि में ये पक्की कर लीजिए, कोई भी शरीरधारी मनुष्यात्मा को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। हम मनुष्यात्माएं परमात्मा की याद से महात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा बन सकते हैं, परंतु परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा कोई बनता नहीं है, परमात्मा कोई पोस्ट पोजीशन या डिग्री नहीं है जो इंसान मेहनत करके बन जाए। परमात्मा कोई बनता नहीं है, अनादि अविनाशी एक परमात्मा है ही, कोई नए परमात्मा बनते नहीं जाते हैं। और एक सिंपल बात, जैसे एक बच्चा अपने पिता जैसा रूपवान, विद्वान, बुद्धिवान, धनवान, बलवान बन सकता है, फिर भी पिता पिता है और पुत्र पुत्र है, रचयिता रचयिता है और रचना रचना है। हम परमात्मा जैसे बन सकते हैं, परमात्मा ही नहीं बन जाते। इसलिए ये पहली बात बुद्धि में स्पष्ट कर लीजिए, कोई भी मनुष्य को परमात्मा नहीं कह सकते। दूसरी बात अंडरस्टूड है कि जो भी साधु सन्यासी है, ऋषि मुनि है, गुरु विद्वान पंडित आचार्य संत महंत जो भी हैं, हम उन्हें महात्माएं कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। बेशक वे महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो एक है, परमात्मा का सही परिचय न जानने के कारण कोई थोड़ी भी रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाते हैं, लोग उनको ही भगवान समझने लगते हैं। लेकिन परमात्मा रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने चिंतन में स्पष्ट कहा है कि जो छोटे जादूगर होते हैं वे छोटा छोटा जादू करते हैं, परमात्मा महान जादूगर है, वे रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं करते। वे तो हमारे जीवन को ही श्रेष्ठ बना देते। इसलिए ये महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। और तीसरी बात, जो भी धर्म स्थापक हुए हैं, आप जानते हैं कौन कौन धर्म स्थापक हुए हैं, जिन्होंने सृष्टि रंगमंच पर आकर अपने अपने धर्मों की स्थापना का कार्य किया है। कौन कौन धर्म स्थापक हुए हैं? इतिहास जानते हो ना, कौन कौन धर्म स्थापक हुए हैं? जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, शंकराचार्य जी, गुरु नानक जी, मोहम्मद पैगंबर साहब, ये जो भी धर्म स्थापक हुए हैं वे धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। वे परमात्मा नहीं है, इसलिए इन धर्म स्थापकों ने स्वयं ही सही कहा है कि हम खुदा के पैगंबर हैं, हम उस गॉड के मैसेंजर हैं, हम परमात्मा के पुत्र हैं। इन धर्म स्थापकों ने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा, ये उनके फॉलोवर्स होते हैं जो अपने धर्म स्थापक में ही सीमित हो जाते हैं और उस परम शक्ति परमात्मा को भूल जाते हैं। तो ये भी हमें स्पष्ट रहे कि ये धर्मात्माएं हैं जो आकर अपने अपने धर्म के स्थापना का कार्य करते हैं, ये परमात्मा नहीं है। और चौथी बात, बहुत ध्यान से निष्पक्ष भाव से समझनी है, हिंदू भाई बहने जिन भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, कितने देवी देवताओं को मानते हैं, कितने? तो जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं वे देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। वे देवी देवताएं हैं, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो एक है और देवी देवताएं अनेक है। इन देवी देवताओं को सभी धर्म वाले नहीं मानते। परमात्मा तो उनको कहेंगे ना जिसे सभी धर्म मान्य करें। इन देवी देवताओं को सभी धर्म वाले मान्य नहीं करते हैं। और अन्य धर्म की बात छोड़िए, क्या हिंदू धर्म के सभी संप्रदाय सभी देवी देवताओं को मानते हैं? मानते हैं? नहीं मानते हैं, नहीं मानते। तो जब ये देवी देवताएं हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों को भी मान्य नहीं है, हम उनको विश्व के सभी धर्म की आत्माओं के पिता परमात्मा कैसे कह सकते हैं? तो ये देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। तो ऐसा कौन सा स्वरूप है जो सभी धर्मों को मान्य है, जिनके कोई माता पिता नहीं बताए हैं, जिनको स्वयं भू गाया हुआ है, ऐसा कौन सा स्वरूप है? है कोई स्वरूप सभी धर्मों को मान्य हो ऐसा कौन सा स्वरूप है? कौन सा स्वरूप है? तो देखिए, मुंझने की बात नहीं, परमात्मा को जानना सबसे आसान है, सबसे आसान है। परमात्मा शब्द ही परमात्मा का परिचय देता है। परमात्मा मीन्स परम आत्मा, सुप्रीम सोल। तो जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा रूप से परम नहीं है, अपने गुणों और कर्तव्यों से परम ऊंचे से ऊंचे। इसलिए रूप ज्योति बिंदु है, लेकिन गुणों के सिंधु है। और आप देखिए, परमात्मा का ये दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप विश्व के सभी धर्मों को भी मान्य है, सभी धर्मों को मान्य है। चित्र में आप देखिए, ज्योति बिंदु परमात्मा को हिंदू भाई बहने ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में मानते हैं। रामेश्वर में श्री राम को भी शिवलिंग का पूजन करते दिखाते हैं। वृंदावन गोपेश्वर में श्री कृष्ण को भी शिव के आगे नमन करते हुए बताया है। एक और विवेक की बात आपको बताते हैं, शंकर जी को भी शिवलिंग के आगे ध्यान करते हुए दिखाते हैं। देखा है ऐसा चित्र? आगे शिवलिंग होता है और शंकर जी को ध्यान अवस्था में दिखाते हैं। ये सोचने की बात है, शंकर जी स्वयं परमात्मा है तो वो किसका ध्यान कर रहे? परमात्मा को तो कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा से ऊपर तो कोई है ही नहीं। शंकर जी तपस्या करते हैं, उनको योगी कहते हैं, तो वो किसके ध्यान में बैठे? जरूर उनसे ऊपर कोई परम शक्ति है जिसके ध्यान में वो बैठे हैं। उस परम शक्ति को ही परमात्मा कहते हैं। इसलिए भारत में 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है। शिवालय शिवलिंग हर शहर गांव गली गली घर घर में पाए जाते हैं। मुस्लिम भाई बहने स्पष्ट कहते हैं, अल्लाह नूर है। वो तो एक निराकार को ही मानते हैं। हिंदी भाषा में हम कहते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप है। वही बात अरबी भाषा में वे कहते हैं, अल्लाह नूर है। नूर मीन्स प्रकाश, ज्योति। आप जापान के बौद्धिस्ट लोगों को देखिए, शिवलिंग आकार का प्रतीक सामने रखते हैं और महायान पंथी बौद्धिस्ट उनका ध्यान करते हैं। इवन आप गौतम बुद्ध को देखिए, महावीर स्वामी को देखिए, ध्यान अवस्था में दिखाते हैं। तो वो किसका ध्यान कर रहे, किससे बुद्धत्व मिला, वो है परम शक्ति परमात्मा, जिससे उनको अवेयरनेस आई, जागृति आई। जीसस क्राइस्ट ने भी स्पष्ट कहा है, गॉड इज लाइट। इसलिए क्रिश्चियन भाई बहने मोमबत्ती जलाते हैं और साइलेंस में प्रेयर करते हैं, परमात्मा के ज्योति स्वरूप को ही याद करते हैं। गुरु नानक जी ने एक निराकार की ही महिमा की, एक ओमकार निराकार सतनाम करता पुरुष, उन्होंने एक की ही महिमा की। तो देखिए विश्व के मुख्यतः जो धर्म है उनके मूल धर्म स्थापक जो भी हैं, उन सबका एक ही इशारा है कि परमात्मा एक है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनको हमारे जैसा शरीर नहीं है, इसलिए हमारी तुलना में उनको निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप कहते हैं। शरीर नहीं इसलिए हमारे जैसा शारीरिक नाम भी नहीं है। हमारे नाम शरीर से है ना, संज्ञावाचक नाम है। देखो मेरा ये शरीर छूट जाए तो मेरा ये नाम भी खत्म हो जाएगा ना? मैं नया शरीर लूंगी, मुझे नया नाम मिलेगा। हमारे नाम शरीर से है, परमात्मा का नाम परमात्मा के गुणों से है, कर्तव्यों से है। वे सारे विश्व का कल्याण करते हैं, इसलिए उनका मूल नाम शिव है। शिव मीन्स कल्याणकारी। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, बेनिफैक्टर। इसलिए परमात्मा को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर। परमात्मा सत्य है, अविनाशी है। शिव कल्याणकारी है, सुंदर सदा पावन है। उनके अनेक गुणवाचक नाम है, अनेक कर्तव्यवाचक नाम है। जैसा कि ओमकारेश्वर, विश्वेश्वर, मुक्तेश्वर, महाकालेश्वर, पापकटेश्वर, भोलानाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, उनके अनेक गुणवाचक, अनेक कर्तव्यवाचक नाम है। पर हमें नामों की लिस्ट याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। हमारा मतलब ईश्वर के गुण और कार्य से है। हम उनके मूल नाम को याद रखते हैं, कल्याणकारी शिव, जिसको प्यार से हम यहाँ शिव शिव बाबा कहते हैं। बाबा मीन्स, बाबा माना, हाँ, बाबा माना कोई साधु बाबा नहीं, हाँ, बाबा माना पिता, हाँ, बाबा माना पिता, गॉड फादर कहते हैं ना, परमात्मा हमारा पिता है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं, हमारे लिए अति गर्व और खुशी की बात यही है कि हम भगवान के बच्चे हैं। हम परमात्मा के बच्चे हैं, किसको खुशी है इस बात की? जोरदार लंबा हाथ बरोबर, बहुत अच्छा। हम सब के लिए, देखो आज दुनिया में कोई ऑफिसर, मिनिस्टर, उद्योगपति के बेटे को भी कितना नशा होता है, कि मेरे पिता ऑफिसर है, मिनिस्टर है, उद्योगपति है। हमें नशा है हम भगवान के बच्चे हैं। देखो कितने थोड़े हाथ उठा रहे हैं। हमें तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम उस ऑलमाइटी परमात्मा के बच्चे हैं। जो पिता परमात्मा संपूर्ण ज्ञान, सर्वगुण और सर्व शक्तियों के सागर है, परमात्मा सागर है, अखुट भंडार है और दाता है, दाता है। ऐसे पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। चित्र में बताया है कि परमात्मा एक इटर्नल फाउंटेन के समान है, अविनाशी फव्वारे के समान है, जो निरंतर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति की अजस्र धाराएं बहाते ही रहते हैं। ऐसे सागर, भंडार और दाता परमात्मा के हम बच्चे हम भी कैसे होने चाहिए, हम कैसे होने चाहिए? पर ना हम अपने आप को जानते हैं, ना पिता परमात्मा को पहचानते हैं, ना हमारा उनसे योग है, संबंध है, इसलिए प्राप्ति भी नहीं है। तब तो भगवान से मांगते रहते, कभी सूर्य से आप मांगते हैं रोशनी दो, वो देता ही रहता है, मांगने की जरूरत ही नहीं, हमें उनके सन्मुख होने की जरूरत है। इस प्रकार हम फव्वारे से मांगते नहीं है शीतलता दो, हम उनके नजदीक जाते हैं और हमें शीतलता का अनुभव होता है। हम अग्नि से मांगते नहीं है गर्मी दो, हम उनके नजदीक जाते हैं, हमें गर्मी का अनुभव होता है। हमें परमात्मा से मांगना नहीं है, हमें प्यार से उनका बनना है, उनको याद करना है, उनसे संबंध जोड़ना है, तो उनकी याद से ही प्राप्ति, अपने आप प्राप्ति है, मांगने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के सागर दाता परमात्मा कौन सा कार्य करते हैं? वो कोई अल्पकाल की प्राप्ति नहीं कराते। परमात्मा वो कार्य करते हैं जो कोई इंसान नहीं कर सकता है। वो कौन सा कार्य है? चित्र में बताया है, परमात्मा का मुख्य कर्तव्य है वे हमें पतित से पावन बनाते हैं। जब सारा विश्व विकारों के पंजे में फंस जाता है, तब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, सद्ज्ञान का प्रकाश देते हैं और विकारों से छुड़ाते हैं। वे न सिर्फ पतित से पावन बनाते हैं, वे हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं, हमें देवता बनाते हैं। और न सिर्फ हम मनुष्यों को नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनाते हैं, परंतु परमात्मा सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। हम कह सकते हैं परमात्मा कलियुगी पतित दुनिया को सतयुगी पावन दुनिया में बदल देते हैं, अनेक धर्मों का अंत कर एक सत धर्म की दुनिया में ले जाते हैं। विश्व परिवर्तन, विश्व पिता ही कर सकते हैं। और ऐसा दिव्य कार्य करने के लिए स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। अगर वे इस दुनिया में आते ही ना हो, हमें मिलते ही ना हो, तो हम उससे क्यों याद करते हैं? क्यों हम उसको बुलाते हैं? जरूर परमात्मा आए हैं, हमें मिले हैं, हमने कभी उनसे सुख पाया है, तब तो हम उनको याद करते हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि परमात्मा सृष्टि पर कब आते हैं? कब आते हैं? कब आते हैं? हर एक भारतवासी जानता है। कौन सा श्लोक बोलते हैं? हाँ, देखो, हरेक जानते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानी होती है, परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है, ये तो आप जानते हैं, पर मेरा आपसे प्रश्न है कि जब जब माना कब? जब जब माना कब? आपने कहा ना, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब परमात्मा आते हैं। तो जब जब माना कब? धर्म की अति ग्लानी कब होती है? एग्जैक्ट समय कौन सा? कलियुग का अंत। कलियुग का अंत अति धर्म ग्लानी का समय है। चित्र में देखिए, संसार चक्र में कलियुग अंत, सतयुग आदि का संधि काल संगम युग दिखाया है, जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। साधारण मानव तन ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा मुख से हमारे अनेक जन्मों की भक्ति का फल सत्य ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं। भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनेंगे, जो कलियुगी आत्माएं, चित्र में आप देखिए, एक तरफ कलियुग नरक दिखाया है, हेल हेल लिखा है, जो कलियुगी पतित नर नारी इस कल्याणकारी संगम युग में परमात्मा के सत्य ज्ञान और योग को सीख कर स्वयं की बुराइयों को स्वाहा करेंगे। चित्र में नीचे देखिए, ज्ञान यज्ञ बताया गया है, ये ज्ञान यज्ञ है, वो मटीरियल यज्ञ होता है, भक्ति में द्रव्य यज्ञ होता है, जिसमें आप जौ घी तिल होमते हैं, पर भगवान आकर के संगम युग में ज्ञान यज्ञ रचते हैं। जो कलियुगी नर नारी ज्ञान और योग की शिक्षा से खुद की बुराइयों को स्वाहा करेंगे, खत्म करेंगे, वे आने वाली सतयुगी दुनिया के मालिक बनेंगे। समझा? इसलिए वर्तमान समय आप सबको यहाँ क्यों बुलाया है, क्यों आप सबको यहाँ आमंत्रित किया है, हमें आप सबको यही प्रभु संदेश देना है कि वर्तमान समय जो चल रहा है संसार चक्र में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय चल रहा है, जिसे हम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। इस सृष्टि परिवर्तन की वेला के समय भगवान के आदेश पर जो भाई बहने अपने वर्तमान जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे, वे ही आने वाली सतयुगी दुनिया में जाने के योग्य बनेंगे। यही संदेश आप सबको देना है। तो कौन कौन बनेंगे, आप में से कौन कौन बनेंगे, सतयुग में आने के योग्य कौन कौन बनेंगे? देखो अभी भी कहीं सोच रहे हैं और एक दो को देख के हाथ ऊपर कर रहे हैं। भाई हम आपको सतयुगी दुनिया में जाने की बात कर रहे हैं, पवित्र योगी बनने की बात कर रहे हैं। कोई बुरी बात करे तो आप हाथ ऊपर ना करें, पर ये तो अच्छी बात है ना। अब आंख बंद करके खुद के उमंग से हाथ ऊपर करो, कौन सतयुग के योग्य बने? अब ताली बजाओ खुद के लिए। हाँ? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट समय है जब खुद भगवान हमें सतयुग के लायक बनाने आते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, योगी बनना माना और कुछ नहीं करना है, हाँ? कई समझेंगे पता नहीं योगी बनना माना क्या करना पड़ेगा, हाँ? कोई घर बार छोड़ना नहीं है, कोई सफेद पहनना नहीं है, हाँ? कोई दाढ़ी मूछ मुंडाना नहीं है, कोई बढ़ाना नहीं है जटा। योगी बनना माना योग्य बनना, सतयुग के योग्य बनना, ईश्वर के बच्चे कहलाने लायक बनना। तैयार है? आप तैयार? बहुत अच्छा। और लास्ट बात, परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं। हर कलयुग के अंत परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं, ध्यान से समझना है। परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं। युगे युगे आते तो कलयुग क्यों होता? फिर कलयुग कैसे हुआ? परमात्मा ने आकर क्या किया? इसलिए हर युग के अंत में परमात्मा नहीं आते हैं। परमात्मा केवल कलयुग अंत, सतयुग आदि के संधिकाल संगम युग में आते हैं, और वे आकर हमें पतित से पावन बनाते हैं। इसलिए अभी ही, अभी नहीं तो, जरा जोरदार बोलो। हाँ, अभी ही ये मौका है, क्योंकि और युग में परमात्मा नहीं आते हैं। परमात्मा से ऊपर और कोई है नहीं जो दूसरे युग में आकर हमें पावन बनाए। इसलिए स्वयं को जानना है, पिता परमात्मा को पहचानना है, और समय को पहचान कर स्वयं का परिवर्तन करना है। परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं। मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ? परमात्मा इस दुनिया में नहीं रहते हैं, जरूर कोई और स्थान पर रहते हैं जहां से सृष्टि पर आते हैं। आप यहाँ हाजिर है तो मैं थोड़ी कहूंगी कि आप आते हैं, आप आएंगे, नहीं, आप है ही है। परमात्मा इस दुनिया में ही होता तो हम क्यों कहते हैं कि वो आते हैं? जरूर परमात्मा इस दुनिया से दूर कहीं और रहते हैं, इसलिए हम परमात्मा के लिए कहते हैं, ऊंचे से ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे से ऊंचा तेरा काम, ऊंचे से ऊंचा तेरा धाम। परमात्मा का धाम ऊंचे से ऊंच दिखाते हैं। अच्छा, जब भी आप परमात्मा को याद करते हैं तो आपकी नजर और बुद्धि कहां जाती है? ऊपर जाती है। हम कहते भी हैं, एक दो को याद कराते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है। कहते हैं कि नहीं, याद कराते हो कि नहीं कराते? कोई गलत करके भी, झूठ मूठ बोलकर इस दुनिया की कोर्ट से छूट जाते हैं, तब भी हम क्या कहते हैं कि यहाँ तो तुम गड़बड़ करके छूट गए, पर ऊपर वाले की कोर्ट से नहीं छूटोगे। कहते हैं ना? तो परमात्मा के लिए हम कहते हैं ऊपर वाला, यहाँ वाला नहीं कहते हैं, ऊपर वाला। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं? आज सुबह आपने समझा है, हम आत्माएं भी इस दुनिया के निवासी नहीं हैं। ये दुनिया हमारा घर नहीं है। हमारे लिए भी यह दुनिया कर्म क्षेत्र है। हम आत्माओं का असली घर परम धाम है, तो परमात्मा का भी असली घर परम धाम है। चित्र में आप देखिए, सबसे नीचे आसमानी रंग से यह दुनिया दिखाई है, जहाँ हम बैठे हैं, जीवन जी रहे हैं, ये फिजिकल वर्ल्ड है। ये पांच तत्व की बनी दुनिया है। हम आत्माओं का और हमारे पिता परमात्मा का असली घर पांच तत्व से पार परम धाम है। चित्र में सबसे ऊपर देखिए, जहाँ अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व छाया हुआ है, हम आत्माएं उस ब्रह्मलोक की निवासी हैं और हमारे पिता परमात्मा भी उसी परम धाम के निवासी। एक सामान्य विवेक की बात, बाप और बच्चों का घर एक होता है या अलग अलग होता है? एक ही होता है ना। असली घर एक ही होता है, वो तो बाद में अलग अलग होते हैं ना। असली घर माँ बाप और बच्चों का एक ही होता है। हम आत्माओं का और हमारे पिता परमात्मा का असली घर एक ही है, परम धाम, जहां से संगम युग में शिव बाबा सृष्टि पर आते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ब्रह्मा मुख से हमें भक्ति का फल सत्य ज्ञान देते हैं। भाइयों और बहनों, वो ही सत्य ज्ञान आप सुन रहे हैं। ये कोई ब्रह्मा कुमारी का या ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है, ज्ञान देने वाला दाता परमात्मा शिव है। ऐसे पिता परमात्मा जो प्यार का सागर है, रहम दिल है, कल्याणकारी है, सुखदाता है, सदा पावन है, सदगति दाता है, ऐसे पिता परमात्मा को हमें कितना याद करना चाहिए? कितना याद करना चाहिए? हाँ, थोड़ा हाथ से बताओ कितना याद करना चाहिए। पर क्या हम इतना याद करते हैं? हैं? नहीं करते, इसलिए आप हाथ से इशारा नहीं करते थे। हम इतना याद नहीं करते हैं, हम शरीर भान में आ जाते हैं, शरीर के मित्र संबंधों को याद करते रहते हैं, जिससे कोई प्राप्ति नहीं है। जिससे कोई प्राप्ति नहीं है, थोड़ा ही सुख मिलता है, बाकी दुख ही मिलता है, उसको याद करते रहते हैं, और जो सदा सुख देता है उसको भूल जाते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। तो हमें इसलिए अभ्यास करना है कि हम सदा उस पिता की याद में रहे। अभ्यास करते करते एकाग्रता भी आएगी और निरंतर याद भी बन जाएगी। तो आज हम पिता परमात्मा को याद करेंगे। दो मूल सत्य आपने समझ लिया है कि योग अभ्यास करने वाले हम आत्मा हैं और हमें योग लगाना है डायरेक्ट परमात्मा से। अब तक वाया वाया जाते थे ना, अब वाया वाया नहीं, डायरेक्ट परमात्मा से योग लगाना है। तो आज का अभ्यास परिचय सहित है, तो सभी व्यवस्थित बैठ जाए, सभी ठीक से बैठ जाइए अलर्ट होकर के, कमर सीधी करके बैठेंगे। अपना डायरी, पर्स, फाइल, बैग साइड में रख दीजिए, हाथ में गोद में लेके ना बैठे। अपनी आंखें नेचुरल खुली रहने दें। आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है, हमें परमात्मा को याद मन और बुद्धि से करना है, इसलिए मन बुद्धि पर अटेंशन देना है, आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। अपनी आंखें नेचुरल खुली रहने दे। आज मैं आपको योग अभ्यास करा रही हूं, इसलिए आप मेरे मस्तक में देखेंगे। मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा हैं। इस रूहानी दृष्टि से देखेंगे और याद शिव बाबा को करेंगे। हम शरीर से यहां बैठेंगे, मन और बुद्धि से असली घर परमधाम में जाएंगे। मन की आंख से परम ज्योति बिंदु शिव बाबा को देखेंगे और बुद्धि से समझ पूर्वक और प्यार से शिव बाबा को याद करेंगे। हमें साइलेंस में बैठकर मन ही मन प्यार से बाबा को याद करना है। आपका ये नया नया अभ्यास है, इसलिए मैं कमेंट्री दूंगी, सजेशंस दूंगी, जो विचार मैं दूं वो मन ही मन फॉलो करना है, मुख से रिपीट नहीं करना है लेकिन मन ही मन रिवाइज करना है, उसके अर्थ को समझकर अनुभव में स्थित होना है। कुछ क्षणों के लिए सभी बातों से अलग हो जाइए। मस्तक बीच स्वयं के आत्म स्वरूप में स्थित हो जाइए। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा, इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रही हूँ। मेरा असली घर शांति धाम है। पिता परमात्मा भी शांति धाम के निवासी है। मैं ज्ञान के नेत्र से परम ज्योति बिंदु पिता परमात्मा को देख रही हूँ। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे शिव पिता, अनेक जन्मों से मैं आपको खोजती रही हूँ। भक्ति में भटकती रही हूँ, आज आपके सत्य ज्ञान को प्राप्त कर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मुझे स्पष्ट है कि मैं कौन हूँ और आप कौन हैं। आपके सद्ज्ञान को पाकर मेरे मन का अंधकार समाप्त हुआ है, मेरी बुद्धि रोशन हो गई है, जीवन का सही ठिकाना मुझे मिल गया है, मेरी प्यारी शिव बाबा अब मेरा यही लक्ष्य है जो ज्ञान आप देते हैं, जिन गुण शक्तियों के आप सागर हैं, बाबा मुझे भी उसे धारण करना है। मेरा ये निश्चय है कि आप पिता शांति के सागर शांति दाता है, तो आपकी संतान में आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ, शांति दूत हूँ, मेरे सर्वशक्तिमान सदा पावन शिव बाबा आपकी याद से मैं आत्मा शुद्ध बनती जा रही हूँ। मैं आपकी याद से ही आपके साथ का अनुभव करती हूँ, शक्तिशाली बन जाती हूँ। मुझे ये निश्चय और खुशी है कि मैं आत्मा आपकी ईश्वरीय संतान हूँ। मैं एक शक्ति हूँ, दिव्य ज्योति हूँ।